તારીખ 18/3/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 106.
શ્રી મદ્રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 833 ચાલે છે. ગુજરાતીમાં 620 પાનું છે. નીચે છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે. પણ કાંઈ ચંદ્રભૂમિ રૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી. દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે હિન્દીમાં. ચંદ્ર ભૂમિ કો પ્રકાશિત કરતા હૈ, ઉસકે કિરણો કી કાંતિ કે પ્રભાવ સે સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત હો જાતી હૈ. પરંતુ ચંદ્ર કુછ ભૂમિ રૂપ કિસી કાલ મેં નહીં હોતા. ચંદ્ર કા પ્રકાશ ભૂમિ પર હોને સે જો પૃથ્વી કા દિખાવ હૈ બદલ જાતા હૈ, और प्रकाश और पृथ्वी के बीच में कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता है. फिर भी दोनों अलग अलग है. चंद्र का प्रकाश भूमि रूप हुआ नहीं, भूमि चंद्र के प्रकाश रूप हुई नहीं. चंद्र अस्त हो जाएगा तो भूमि पर जो श्वेतता थी वो श्वेतपना मिट जाएगा. क्योंकि जब दोनों साथ दिखते थे पर फिर भी उस वक्त अलग ही थे, એક દૂસરે રૂપ હોય નહીં છે. ઇસી પ્રકાર સમસ્ત વિશ્વ કા પ્રકાશક એસા યહ આત્મા. આત્મા જો હૈ સમસ્ત વિશ્વ કા પ્રકાશક હૈ. જો ભી પદાર્થ હૈ ઉસમેં જ્ઞેયત્વ નામ કી શક્તિ હૈ. वो अपने आप को दूसरे के ज्ञान में अपना स्वरूप को जना दे, बता दे, उसको ज्ञेय शक्ति कहते हैं. और आत्मा में ज्ञान नाम की शक्ति है, जितने जानने योग्य होते हैं उनको वो जान सकता है. और विश्व में कोई पदार्थ में ज्ञेयत्व नहीं है ऐसा नहीं है, और आत्मा किसी को नहीं जाने ऐसा नहीं बनता. दोनों का जो धर्म है आपस में ज्ञेय ज्ञायक संबंध से मेल खाता है. इसलिए आत्मा विश्व के समस्त पदार्थों को जानता है, प्रकाशक होता है, मैंने जानता है. फिर आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होता. जो पदार्थ को वो जानता है वो पदार्थ रूप आत्मा नहीं होता. जान लिया तो जान लिया. जानने से कोई दो पदार्थ के बीच में कुछ भी एकत्व होता हो या मिलावट होती हो या एक दूसरे मिलता हो, द्रव्य क्षेत्र से, काल से, भाव से मिलते नहीं कोई. सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही रहता है और आत्मा अपने स्वरूप में रहता है. जो चैतन्य स्वरूप है इसका, उस स्वरूप में आत्मा स्वरूपस्थ रहता है. जानने के वक्त, नहीं जानने के वक्त भी वो अपने स्वरूप में है. विश्व में जीव अभेदता मानता है, यही भ्रांति है. जब वो भिन्न रहता है फिर भी अभेदता मानता है, इसका मेरे से ये संबंध, इसका मेरे से ये संबंध. जो एक पर द्रव्य से संबंध रखता है, मानता है, वो सारे विश्व के साथ संबंध अभिप्राय में कर लिया उसने। आज इससे संबंध किया माना, कल दूसरे से मानेगा, कल तीसरे से मानेगा। उदय अभी किसी के साथ अपनेपन करने का है, लेकिन अभिप्राय में वो सारे विश्व के साथ उसकी अभेदता पड़ी है। इसलिए मिथ्यात्व का और अज्ञान का अपराध भी अनंत है ऐसा गिनने में आता है। जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं है, आकाश एक इतना बड़ा द्रव्य है, लोकालोक में व्यापक है, उसमें विश्व का प्रवेश नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि ये लोकाकाश है, बाकी का सब अलोकाकाश है, फिर भी आकाश आकाश है, विश्व विश्व है। अपने स्थूल दृष्टांत ले तो कि आकाश में बादल नहीं होते हैं, बादल छाते हैं, इसमें आकाश को क्या लेना देना है? कुछ बादल बने फिर बिखरे, फिर बने बिखरे, आकाश को क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, बने और बिखरे उसको कोई संबंध नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा है कि ज्ञानोपयोग एक समय में एक को या पर को जानेगा, सदमस्त का ज्ञान एक समय में स्वपर प्रकाशक नहीं हो सकता। कृपया इस विशेषण को स्पष्ट कीजिए। टोडरमल जी ने उपयोग के विषय में वो बात लिखा है, सदमस्त का उपयोग है वो एक समय में एक को जानता है, दो को नहीं जानता है, लेकिन ज्ञान की पर्याय सिर्फ उपयोग में समाप्त नहीं होती है। उपयोग तो ज्ञान की पर्याय का एक अंश है। और टोडरमल जी ने ऐसा कभी नहीं लिखा है कि आत्मा स्वपर प्रकाशक नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो बात जोड़ दिया है वो, तो प्रश्न करने वाले ने साथ में जोड़ दिया है कि टोडरमल जी ने लिखा है कि ज्ञानोपयोग एक समय में स्व को या पर को जानेगा, एक समय में या तो स्व को जानेगा या तो पर को जानेगा, छद्मस्त का ज्ञान एक साथ एक समय में स्व पर प्रकाशक नहीं है, ऐसा टोडरमल जी ने नहीं लिखा है। ये प्रश्न में गलत प्रश्न पूछा है, टोडरमल जी ने ऐसा कही नहीं। टोडरमल जी ने स्वपर प्रकाशक लिखा है, लेकिन स्वपर प्रकाशक नहीं है ऐसा नहीं लिखा है। और वो भी लिखा है कि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक को जानता है, दो को नहीं जानता है, फिर भी वो उपयोग की बात है। उपयोग के सिवा भी ज्ञान के पर्याय में लब्धांश होता है, और लब्ध उपयोग होकर के पूरी एक ज्ञान की पर्याय होती है। इसलिए आत्मा स्वपर प्रकाशक है, लब्ध अंश से वो स्व को जानता है। स्व को जानता है तो आत्मज्ञान हो गया कि वो इधर प्रकरण नहीं है। अपना अस्तित्व मालूम है कि नहीं है आत्मा को? मालूम है। किसमें मालूम है? कि लब्ध अंश में मालूम है कि मैं हूं। जब वो पर को जानता है तो मैं नहीं हूं और पर को जानता है, ऐसा जानता है क्या? ऐसा उसमें जाने का कि मैं तो नहीं हूं लेकिन पर को जानता हूं, तो फिर किसने जाना? मैं पर को जानता हूं, इसमें मैं का ज्ञान आया कि नहीं आया? कैसे कहेंगे कि उस को नहीं जानता है? वो बात नहीं है। किसका प्रश्न है? इसमें पढ़ा था, किसी ने वो प्रश्न चर्चा में पूछा होगा। अच्छा हाँ, जैसे हम लोग इधर तत्व चर्चा के लिए बैठे हैं और आत्मा की चर्चा चल रही है, उपयोग की चर्चा चल रही है, चलो ज्ञान की चर्चा चल रही है कि भाई लब्ध उपयोग क्या है। तो आप जो है, आपको गणित का ज्ञान है कि नहीं है? जब स्कूल में पढ़े थे और जब व्यवसाय में भी हिसाब किताब करते हैं, रोज पैसे के लेन देन भी करते हैं कि नहीं करते हैं? जो माल खरीदते हैं उसके पैसे देते हैं, सब्जी खरीदते तो उसके पैसे देते हैं, गणित का ज्ञान है कि नहीं है? आपने 1 किलो टमाटर दिया तो उसका 10 रुपया ले लो, ये गणित का ज्ञान। ये उपयोग की चर्चा करते वक्त नाश हो गया है, ये ज्ञान का अभाव हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आपके लब्धांश में ऐसे बहुत से विषयों का ज्ञान होता है। जैसे ये लोग रसोई बनाते हैं, तो अभी तो रसोई बनाने का उपयोग नहीं चलता है, अब तो शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है। तो क्या रसोई बनाने का ज्ञान का नाश हो गया उन लोगों का, कि रोटी कैसे बनानी, सब्जी कैसे बनानी, कि नहीं? वो ज्ञान है, उसका अस्तित्व है, व्यापार रूप नहीं है, लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं होता है। उसको प्राप्त ज्ञान, लब्ध ज्ञान, मैंने लाभ हुआ है ऐसा ज्ञान, एक्वायर्ड नॉलेज जिसको कहते हैं, वो हर एक में होता ही है। जैसे हमारे यहाँ कोई प्रसंग होता है, फंक्शन होता है, बहुत से काम होते हैं उसमें, शादी वगैरह का होता है, तो बहुत से काम होते हैं, तो हमको सब काम मालूम है, कितने कितने काम करने पड़ेंगे, कितने कितने काम के लिस्ट बनाए हैं, क्या क्या काम करना होगा। लेकिन एक साथ एक काम हाथ में लेंगे तो दूसरा कोई अपने को टोकेगा, कह अरे वो भी काम है, वो भी काम है, वो भी काम है, 10 काम है आप ये करते हो। तो कहने वाला क्या कहेगा कि हमको सब मालूम है, 10-20 काम मालूम है, अभी ये काम करना जरूरी है, इसलिए ये किस काम को कर रहे हैं। तो काम 10-20 होने पर भी प्रायोरिटी कैसे देते हैं? 10-20 काम एक साथ मालूम है, उसमें एक काम को प्रायोरिटी देते, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के काम हमारे ज्ञान में है लेकिन प्रायोरिटी इसकी है, बाद में इसकी है, बाद में इसकी है, बाद में इसकी है। कोई भी काम भी क्रम से होता है। जब ये रोटी बनाने का होता है, उस वक्त ज्ञान में नहीं है कि पूरी अच्छी रोटी बनाने के बाद उसको चूल्हे पे सेकी जाएगी, फिर उसमें घी लगाया जाएगा, फिर खाई जाएगी, वो सब ज्ञान नहीं है उस वक्त? क्या खाने तक का ज्ञान है क्या? नहीं है खाने, क्या हजम करने तक का ज्ञान है उसका? तो सब ज्ञान तो रहता ही है, लेकिन काम उपयोग तो बनाने में चलेगा, और बनाते बनाते वो उपयोग कहीं जाएगा तो भी बनाना चालू कैसे रहता है? रोटी बनाते बनाते और विचार चल जाता है, उपयोग अमेरिका तक चला जाता है, अरे लड़का अमेरिका गया है, पहुंचा होगा, माँ ऐसा होगा, माँ ऐसा होगा, रोटी बनती है क्यों बनती है? चालू क्रिया रहती है कि नहीं रहती? तो ज्ञान का जो पर्याय है लब्ध उपयोग आता है, उपयोग को व्यापार कहते हैं ज्ञान का, और वो एक ही विषय के साथ बाकी व्यक्ति जो बात जानकारी में अच्छी तरह रहती है, आपको बराबर पहुँचा दी। जिसका प्रायोरिटी होगा उपयोग उसका चल जाएगा, सहज चल जाएगा, चलेगा। इधर नहीं बैठे हैं, भाव में तो वहाँ बैठे हैं, जहाँ उपयोग चला गया वहाँ बैठे हैं भाव में। तो इसलिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि कोई भी उदय का कार्य करता है, तो दुकान पर बैठा है कि लड़ाई में बैठा है? आत्मा में बैठा है, और कहीं नहीं बैठा है, वो आत्मा में बैठा है। उपयोग जाता है, रस नहीं जाता है। अलग अलग हो सकता है, और खुलासा करना है तो कर, जैसे
एक आदमी का 25 साल का लड़का मर गया, पर उसको लड्डू अच्छा भी लगता है, खाता है, सारी जिंदगी बहुत खाया भी है, लेकिन 13वें के दिन कैसा खाएगा वो। 25 साल का लड़का, जवान लड़का घर से चला गया, मर गया बात बात में, उसका जो घाव पड़ा है वो उनको लड्डू खाने में रस नहीं है, उपयोग लड्डू खाने में अवश्य है। टुकड़ा करता है लड्डू का, हाथ से मुंह में रखता है, चबाता है, रस नहीं है उसका, बिल्कुल रस नहीं आता है। अरे ये क्या है, उपयोग तो टुकड़ा उगड़ा करने में उपयोग तो लगता है, ऐसे टुकड़ा कैसा करेगा, उपयोग तो जाएगा लेकिन रस नहीं होएगा। ये परिणामों के अभ्यास करने जैसी चीज है। हमारे जो परिणाम चलते हैं अलग अलग प्रसंग में, तो उसको ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके, इसका अनुभव करके हमको उसका अभ्यास करना चाहिए कि अंदर में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चलता है, और वो सब अभ्यास करके फिर इसका विवेक करना पड़ता है। वो विवेक का फल वो है कि हम विवेक अच्छी तरह करेंगे तो हम सुखी होंगे, विवेक अच्छी तरह नहीं होगा तो हम दुखी होंगे। तो सही ज्ञान करने से विवेक की उत्पत्ति होती है और यही सुख का कारण है जीव को। आखिर में जो बात है उसके पीछे प्रयोजन सुख प्राप्ति का है, दुख से हटने का है और सुख को प्राप्त करने का है, इतनी सी बात है। साथ भी होता है, भिन्न भी होता है, संवाप व्याप्ति भी होती है, विषम व्याप्ति भी होती है रस की और उपयोग की। विषम मैंने इस वक्त रस नहीं हो, साथ में व्याप्ति उसको समव्याप्ति कहते हैं उपयोग और रस की, और साथ में नहीं भी हो तो विषम व्याप्ति कहते हैं। वो बहुत अच्छा प्रकरण चला है पंचाध्यायी के दूसरे अधिकार में, उत्तरार्ध में सम्यक दृष्टि का प्रकरण चला है। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो शुद्धोपयोग में होता है, जब सम्यक दर्शन होता है पहला तो शुद्धोपयोग के काल में होता है, लेकिन शुद्धोपयोग की सम्यक दर्शन के साथ विषम व्याप्ति भी हो सकती है और समव्याप्ति भी हो सकती है। उत्पन्न होने के काल में समव्याप्ति होती है और बाद में विषम व्याप्ति होती है, उपयोग और जगह जाता है, सम्यक दर्शन चालू रहता है, और उपयोग और जगह जाता है लब्ध ज्ञान आत्मा के साथ रहता है, आत्मा का ज्ञान का नाश नहीं होता है, और उपयोग शुभ शुभ दोनों प्रसंग में जाएगा। नहीं, शायिक संकेत दूसरी बात है, शुभ संकेत में भी ऐसा रहता है। अच्छा प्रश्न क्या है इसमें, रस कहाँ जाता है, जहाँ उनको सुख का निश्चय पड़ा है वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ सुख का निश्चय पड़ा हो वहाँ खिंचाव रहता है जीव का, परिणाम का खिंचाव है, हाँ चला जाता है और जगह। कोई ठिकाना नहीं रहता है परिणामों का, ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि बाहर में रस पड़ा है, बाहर में सुख माना है, सुख का निश्चय किया है तो जाएगा। अगर ऐसा निश्चय करके बैठेगा कि ये स्वाध्याय है, मेरे परम सुख का कारण है, इसलिए मुझे बहुत लक्ष्य दे करके स्वाध्याय करना है, तो उपयोग नहीं जाएगा, हाँ तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, एक घंटा तक बिल्कुल कहीं उपयोग नहीं जा सकता, ऐसा भी बनता है, ऐसा नहीं है कि जाएगा ही, ऐसे जिसकी योग्यता।
तो
नहीं जाएगा, वो तो है,
तो जाएगा
भले ही मान्यता नहीं बदली हो, लेकिन ये मान्यता ढीली हो गई हो, शिथिल हो गई हो मुमुक्षु को, मान्यता तो बदलेगी सम्यक दर्शन हो जाता, लेकिन शिथिल हो गई और इसका महत्व ज़्यादा भाषित हुआ कि ये आत्मकल्याण की चर्चा चल रही है, मैं मेरे आत्मकल्याण का प्रसंग के लिए ही यहाँ बैठा हूँ, उपस्थित हुआ हूँ और मेरी पूरी शक्ति से मुझे यहाँ काम करना है, ऐसा अभिप्राय लेकर के बैठेगा तो भी उपयोग नहीं जाएगा। हाँ, फिर उपयोग नहीं जाएगा, फिर बराबर लगातार एक महीना एक घंटा बराबर उपयोग रहेगा इसमें।
वरना तो जैसे अगर रहेगा कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे किचन में जाना है, हाँ, तो बार बार घड़ी की तरफ ध्यान जाएगा, इतना देर बाकी, इतना देर बाकी, इतना देर बाकी,
इसमें क्या है
ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रस तो वहाँ का पड़ा है और बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ बैठ करके भी दर्शन भाव का वो प्रबल कर रहा है,
यहाँ बैठा है और दिमाग में भूत दूसरा सवार हो गया है किसी को किचन का और किसी को ऑफिस का तो जिसका भूत सवार हो गया है वो भूत उसको नचाता है उसके उपयोग को नचाएगा, इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा। करता है कोई भी धार्मिक साधन करेगा दर्शन मुख को प्रबल, कोई भी साधन लो अगर वो यथार्थ रूप से उसमें परिणाम नहीं लगे तो दर्शन मोह बढ़ जाएगा।
अच्छा, एक ही समय अगर सत्संग का टाइम है और डेली हमारा नियम है मंदिर जाने का, मंदिर का भी टाइम है, बिना मंदिर गए भी उपयोग उधर चलता रहेगा और सत्संग भी इम्पोर्टेंट है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे तो हमारा दर्शन मोह नहीं बढ़ेगा।
मंदिर जाने का उपयोग क्यों लगा रहेगा, क्या इससे बढ़िया स्वाध्याय में परिणाम नहीं होते हैं? मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं, ऐसे वो दर्शन करने का जो परिणाम है और इधर स्वाध्याय करने का जो परिणाम है, दोनों में से कौन सा परिणाम बढ़िया है?
सत्संग
का है, तो फिर उसका महत्व क्यों देते हैं? जिसका जिसमें ज्यादा लाभ हो वही व्यापार करें। नियम ऐसा नियम बिना समझे क्यों ले लिया, समझना वो चाहिए था कि किसमें हमारे परिणाम अच्छा रहता है वही हम करें। नियम लेने के कोई पाबंदी तो नहीं है कि नियम लेना ही पड़ेगा तुमको, बिना समझे जो नियम लेते हैं वो जीव का स्वच्छंद के अलावा क्या चीज है, वो जीव का स्वच्छंद है। कोई ज्ञानी गुरु के पूछ करके नियम लिया था नहीं, ऐसे ही अपने आप ले लिया था, अपनी समझ से ले लिया था, तो ऐसा तो स्वच्छंद से बहुत धर्म साधन किया है, किसकी मुख्यता देना किसके गौणकर्ता करना इसका विवेक किया ही नहीं है कभी। तो इसका मतलब ये हो कि क्या परिणाम देना चाहिए हमको, कहाँ लाभ है उसका पता नहीं है हमको, हम नहीं जानते कि हमारे परिणाम कहाँ अच्छा होता है, तो ये गड़बड़ कर लेते हैं। आज मंदिर जाने के कारण से सत्संग में समय पर नहीं पहुंचेगा, कल सब्जी लेने के कारण से नहीं पहुंचेगा, बात तो वैसी बनने दोनों बात बनने वाली है, ऐसा ही हो जाएगा। तो ये जो सत्संग है उससे कीमत ज्यादा सब्जी की हो जाएगी, ये बात बनेगा। सब्जी 10-15 रुपये किलो मिलती है, सत्संग कितना रुपये किलो मिलेगा, ये सवाल है।
वो सवाल नहीं है,
यहाँ विवेक करने का सवाल है कि कौन सा काम कब करना चाहिए। मानो ऐसा हो गया कि आप सत्संग में आए और फिर मंदिर बंद होने का टाइम हो गया और मंदिर बंद हो जाता है और वहाँ दरबान जी नहीं रहते, समझो हमको पता नहीं है कि चाबी किसके यहाँ रहे, पर दर्शन छूट गया तो क्या करना,
तो
भले ही छूट गया लेकिन हमको सत्संग पहले करना, सत्संग नहीं छूटना चाहिए,
जहाँ से दिशा मिलती है हमको सूझ मिलती है वो नहीं छूटना चाहिए।
दर्शन कैसे करना वो भी सत्संग सिखाएगा। कौन सिखाएगा? तो भगवान का दर्शन कैसे किया जाता है वो भी सत्संग में समझने मिलेगा। तो सत्संग के जैसा कोई साधन है ही नहीं। कृपालु देव तो पुकार पुकार करके कहते हैं कि सत्संग जैसा आत्महित का बलवान साधन न हमने कभी देखा है न कभी हमने जाना है, ऐसा दिखा है। तो इनका अनुभव बोलता है, अनेक भवों का अनुभव बोलता है, एक भव की बात नहीं है, अनेक भवों का अनुभव का निचोड़ है इसमें, ऐसी बात है।
क्या भाव
उनको
देखना है?
हाँ, वो सत्संग में
समझ। ये नहीं कि फेरी इधर लगा रहे, नजर उधर 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 दिखा रहे, या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये नहीं देखना।
तो ऐसा ही होगा, समझ में नहीं आएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। बहुत समझने का है। ऐसे हैं, जीव ने भूतकाल में अनंत काल में धर्म के बहुत साधन किए हैं, जो कृपालु देव ने लिखा, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, बहुत साधन, वह साधन बार अनंत कियो, फिर भी दर्शन मोही बढ़ाया है। सब साधन करते हुए दर्शन मोह को बढ़ाया है। कहाँ से आई वो? तो
दर्शन किसका करने गए थे, वो तो किया नहीं।
जिसका दर्शन करने के गया उसका तो दर्शन किया नहीं। क्या है कि आप दिगंबर लोग हैं, दिगंबर के घर में जन्म हो गया तो जाने लगे दिगंबर मंदिर में, और श्वेतांबर के घर में जन्म होगा तो वहां जाते, और वैष्णव के घर में जन्म हुआ तो वहां चले जाते, और ज्यादा तो कुछ उसमें समझे तो नहीं कि हम क्यों इस मंदिर में जा रहे हैं, और दूसरे के मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हैं। हमारा ये है, उनका वो है, पड़ोस वाला ये है, हमारा वो है, इससे ज्यादा कुछ समझते नहीं। इससे क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं। जाओ मन नहीं जाओ, सब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें। जाएगी 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 जाएगी।
हम निज परमात्मा का दर्शन करने नहीं जाते हैं, परमात्मा का दर्शन करने जाते हैं।
वो परमात्मा को भी, परमात्मा का स्वरूप का भी कहाँ पता है? अगर इसका स्वरूप का पता चल जाए तो अपना भी पता चल जाए। कोई कोई पता नहीं है, ये तो माथा फोड़ दिया निकल गए बाहर, माथा फोड़ा निकल गए बाहर, और कुछ नहीं।
भावना
होनी चाहिए, आत्मस्वरूप है। जिन जिन पद निज पद एकता भेद भाव ने कई लक्ष्य थवाने ते नो कया शास्त्र सुखदाय। तो आत्मा का स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा सीधा भाव आना चाहिए कि मेरा स्वरूप है, भीतर में ऐसा ही मेरा स्वरूप है। जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं है, सर्व भाव की वासना से आकाश रहित ही है। आकाश में दुनिया के सब जीव है, और सब प्रकार के भाव अनेक अनेक जीव को होता है, आकाश को क्या लेना देना है? आकाश इतना बड़ा है कि आखिर विश्व उसमें रहता है, और विश्व के सभी जीव अपने अपने योग्यता अनुसार भाव करते, आकाश को क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं है, सर्वभाव की वासना से आकाश रहित ही है, वैसे ही सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्वद्रव्य से भिन्न सर्व अन्य पर्याय से रहित ही आत्मा देखा है। देखो, सम्यक दृष्टि ने अपना स्वरूप कैसा देखा है? आकाश का तो दृष्टांत है कि प्रत्यक्ष, पहले तो वो बात है, आत्मा को देखा है उतना ही नहीं, आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है कि मेरा स्वरूप प्रत्यक्ष ऐसा है। प्रत्यक्ष में क्या फर्क है कि हम विचार करते हैं आत्मा का, उसमें आत्मा परोक्ष रहता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ऐसा जो विचार है उसमें आत्मा, उस विचार ज्ञान में आत्मा परोक्ष है, जबकि अनुभव ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष है, वेद्य वेदक रूप से स्वयं वेदन में आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि पुरुषों ने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है। कैसा प्रत्यक्ष देखा कि सर्व द्रव्य से भिन्न और सर्व अन्य पर्यायों से भी रहित ही देखा है, कि कोई द्रव्य, कोई द्रव्य की पर्याय से मेरे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। जो संबंध माना वही संसार है। कल रात को आया था कि नहीं आया था, 537 में देखो, फिर से थोड़ा है, उसको रिपीट करने लायक है। 537 साधन है, और वह साधन भी यदि जीव पुरुषार्थ को छिपाए बिना उनमें लगाए तभी सिद्ध होते हैं। पुरुषार्थ को छिपाए बिना इस साधन की प्रवृत्ति होनी चाहिए पूरी ताकत से। अधिक क्या कहें, इतनी संक्षिप्त बात यदि जीव में परिणमित हो जाए अपनत्व नहीं करने की, तो वह सर्व व्रत कर चुका, यम कर चुका, नियम कर चुका, जप कर चुका, यात्रा कर चुका, भक्ति और पूरा शास्त्र ज्ञान भी वो कर चुका, शास्त्र भी सब पढ़ लिया उसने, इसमें कुछ संशय नहीं है। जाओ मास्टर की दे दी, अपना तो छोड़ो बस, यम नियम संयम जप यात्रा भक्ति सब शास्त्र ज्ञान सब हो गया तुम्हारा, जाओ। नहीं है ठीक है, हैं?
ट्रांसफर कर देना बहुत इजी साधन है,
बहुत सरल साधन है वो, क्योंकि उसमें तो मोह को नहीं छोड़ना है, मोह के विषय को बदलना है सिर्फ, तो इसमें क्या आपत्ति। वैसे विषय तो बदलते ही हो, पहले माँ के प्रति मोह था, बाद में पत्नी के प्रति हो जाता है, तो वैसे विषय तो बदलता ही है जीव है। फिर पत्नी घर में आने के बाद पैसे से मोह हो जाता है, तो पत्नी के सामने भी नहीं दिखता है, 10-10, 12-12 घंटा नहीं आएगा घर पे, या ट्रैवलिंग में चले जाएगा तो 2-2 महीने के बाद आएगा। और राजस्थान वाले तो साल में एक दफे जाता है अपने घर, बाकी कलकत्ता मुंबई में ही रहते हैं। किससे मोह हुआ, कि पैसे से हो गया, स्थान बदलता है तो तुम स्थान बदल दो, बात खत्म। वो भी समझ होनी चाहिए ना, इसकी भी समझ होनी चाहिए कि क्यों बदलना है। ऐसा है, जीव लाभ के पीछे दौड़ता है, कोई भी जीव हो अपने लाभ के पीछे दौड़ता है, उनको जहाँ लाभ लगा है वहाँ दौड़ता है, सीधी बात है। हाँ, फिर भी उनको दूसरा लाभ ज्यादा दिखता है,
नुकसान लाभ दिखता है, नुकसान लाभ दिखता है।
हाँ, नुकसान को भी लाभ माना है, और अभी तक तो नुकसान को लाभ मानकर ही नुकसान किया है, क्या किया है अभी तक संसार में जितने दुख भोगे, क्यों भोगे, कि नुकसान को लाभ मान करके, तो और उसी का नाम अज्ञान है, नुकसान को लाभ मानना उसी का नाम अज्ञान है या विपरीत ज्ञान है, और क्या है, सीधी सादी बात।
इतना सुनने समझने मतलब
के बावजूद भी इतना मामूली सा विवेक जागृत नहीं होता है, क्यों? बस ये विवेक, उसको जो मिथ्या आग्रह है अपने छूटता है तो क्या करे, इसका कोई उपाय होता है? मिथ्या आग्रह जो है वो सत्संग से छूटता है। मिथ्या आग्रह किससे छूटता है? कि सत्संग से छूटता है। और सत्संग में आकर के अगर मिथ्या आग्रह नहीं छूटा तो फिर जगत में इसके लिए तो कोई दूसरा साधन है ही नहीं। जहाँ छूटने का उपाय था वहां भी नहीं छूटा तो फिर दूसरा कोई उपाय तो है ही नहीं। एक घंटा ऐसा दो कि फिर 23 घंटा वही चले अंदर में, रोटी बनाते बनाते भी वही चले, चलते चलते भी वही चले, और बिस्तर में जाते भी वही चले सोते सोते। ऐसा एक घंटा लगाओ, जिसका रस होएगा वही चलता ही रहता है वैसे ही। ऐसा नहीं कि रोटी बताते बनाते वक्त दूसरा विचार नहीं चलता है, चलता है, चलता ही है। जहाँ रस पड़ा है, जहाँ सुख लगा है, वहाँ वही चलेगा। एक बहुत अच्छी बात है इस विषय में कि हमारे नजर में प्रत्यक्ष तिर्यंच प्राणी बिना मन के देखने में आते हैं। ये चींटी है, मक्खी है, छोटे मोटे अनेक जीव हैं, वो देखने में आते हैं कि नहीं आते? जिसको मन नहीं है, क्यों मन नहीं मिला उसको? कि जब उसको मिला था तब उसने इसका दुरुपयोग किया है, और जो जान करके दुरुपयोग करता है वो ज्यादा अपराधी होता है। जो नहीं समझते हैं उनको तो हो ही जाता है, समझते होता है, समझकर होता है तो ज्यादा नुकसान होता है। तो जब मन मिला तब इस विवेक मन से नहीं किया आत्महित का, और अहित में अपने परिणाम लगाए तो कुदरत उनको लंबे अनंत काल तक मन नहीं मिले ऐसी स्थिति में रख देता है। जाओ, ये तुम्हारी सजा है, तुमने क्यों विवेक नहीं किया? मन से विवेक करने का तुम्हारा धर्म था, फर्ज था, वो तुमने चुकी है, वो यहाँ रख देते हैं। ये सब प्राणी इस प्रकार का ज्ञान करने के लिए वो अपने सामने हैं कि इसकी इस पर से ये ज्ञान होना चाहिए कि अगर विवेक नहीं किया जाएगा तो यही हालत होने वाली है। और इसलिए गुरुदेव तो ऐसे कहते थे कि यह जीव है ये बहुत बड़ा भड़वीर है, भव भ्रमण से भी नहीं डरता। क्या? भव भ्रमण से भी नहीं डरता, इतना भड़वीर है। भड़वीर है मैंने बहादुर है, उसको भय नहीं लगता है। तो भव भ्रमण के जो कारण है उनका सेवन करते करते वो चला जाता है। वैसे ही विश्वास नहीं, विश्वास आए तो दूसरी बात बनती है, वजन बदल जाता है, प्रायोरिटी चेंज हो ही जाती है। तो असरलता से अपने को नुकसान होता है, पारमार्थिक सरलता है तो अपने को लाभ हो जाएगा। वैसे ही सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्वद्रव्य से भिन्न सर्व अन्य पर्याय से रहित ही आत्मा को देखा है। कोई द्रव्य के साथ मेरा लेना देना नहीं, कोई जीव के साथ नहीं, कोई संयोग के साथ नहीं, सचेत अचेत, सचेत अचेत मिश्र, मेरे से कोई संबंध रखने वाला नहीं है, मैं एक असंग चैतन्य हूँ। ये तो भावना आएगी इस पत्र में, मुख्य अंश तो शेष में है, बहुत अच्छी भावना लिया है। नो एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता।
सबसे भिन्न हो।
हाँ, सर्वद्रव्य से मैं भिन्न ही हूँ,
नहीं
इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो। नहीं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना, जब दोनों में अभिन्नता है तो फिर कहने की क्या जरूरत रही, चर्चा करने की कहाँ जरूरत रही।
यही तो पंचम काल की, ये भी जीव को बताना पड़ता है।
वो ठीक है, बाकी आत्मा और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं है। वो तो 213 में कह गए, हे पुराण पुरुष तेरे में और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं है, तो बात कहने की भी नहीं रहती ना। बाकी सब अन्य द्रव्य है, बाकी सब अन्य द्रव्य है, ऐसी बात है। जिसकी उत्पत्ति किसी भी अन्य द्रव्य से नहीं होती, ऐसे आत्मा का नाश भी कहां से हो। जिस आत्मा की उत्पत्ति कभी नहीं हुई उसका नाश कहां से होने वाला है। अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति है। एक तो जो जानता नहीं है इसलिए उनको मृत्यु का भय होता है, और जो जानता है फिर प्रमाद करता है, पीछे करूंगा पीछे करूंगा, उसको इसलिए उसको मृत्यु की भ्रांति है, मृत्यु का भय उसको लगेगा। मृत्यु आने से पहले ही कोई प्रसंग से ही मृत्यु का भय हो जाएगा। उसी भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदैव निर्भय है। बहुत सुंदर वचनामृत है। तो ऐसी भ्रांति को नाश करके ज्ञानी को ऐसी भ्रांति नहीं होती कि मेरा कभी मृत्यु होने वाला है। उसकी डिक्शनरी में से, शब्दकोश में से भय नाम का शब्द भी चला गया तो मृत्यु, मृत्यु तो भय से ओरिएंटेड है, मृत्यु से भय होता है, भय तो मृत्यु के बाद मृत्यु के कारण से होता है। जब भय नहीं रहा तो मृत्यु कैसे रहा। न अपने शब्दकोश में मृत्यु भी है न भय भी है, ज्ञानी सदा निर्भय ही है। ओ बिल्कुल आ जाती है, मुमुक्षु की यथार्थ मुमुक्षुता होती है तो आ ही जाएगी, उसमें कोई सवाल नहीं है। इसमें क्या है, होगा क्या, अपने में कुछ होने वाला है ही नहीं ना, होगा क्या, होगा मेरे से बाहर होगा, जो कुछ होगा मेरे से बाहर होगा, और होगा इससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस जगत का स्वतंत्र द्रव्य हूँ, मेरा अस्तित्व में कोई बाधा पहुंचा सकते नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेरा है हमेशा के लिए, सदा के लिए, और परिपूर्ण है, मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, इस जगत का स्वतंत्र द्रव्य हूँ, स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा हूँ, और मेरे किसी से मेरा लगाव नहीं, इसलिए मुझे दुख भी का कोई कारण नहीं, सुख अपने आप में है, सुख लाने की कोई परिस्थिति नहीं है कि लेना जाए, सुख लेना है उत्पन्न करना है वो बात नहीं है। सुख धाम अनंत सुसंत चाहिए, सुख का धाम तो मैं ही हूँ, मैं ही सुख धाम हूँ। दो जगह सुख धाम शब्द का प्रयोग किया है, एक आत्मा के लिए और एक सत्पुरुष के लिए। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, यहाँ सुख धाम शब्द को लगाया है। पर ये सुख धाम है अनंत, अनंत सुख का धाम तो मैं ही हूँ, सुख लाने का तो सवाल नहीं, पर जितना दूसरे से लगाव किया उतना दुख हुआ, काट दिया बात खत्म। उसी भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य असंग चैतन्य निज अनुभव प्रमाण, मेरा मेरे में ज्ञान का अनुभव हो रहा है, उतना ही मैं हूँ, मेरी सत्ता कितने में, मेरा अस्तित्व कितने में, निज अनुभव प्रमाण जितना मुझे मेरा अनुभव हो रहा है उतना ही मैं हूँ, इससे आगे मैं नहीं हूँ। ऐसे स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी तो हमेशा निर्भय है। इसी स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है। अगर ऐसे स्वरूप का लक्ष्य हुआ तो मेरे जैसे ही सब है उसमें साम्य भाव आएगा, एक सरीखा भाव आ जाएगा, सब मेरे के बराबर है, सब ऐसे ही जीव है, किससे हिनाधिकपना दिखना वो बात रहेगी नहीं। जीव रूप में ही लेगा, वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूँ।
जो निज को जीव रूप में नहीं लेता वो अन्य को जीव रूप में ले नहीं सकता।
नहीं, वो फिर कल्पना करेगा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, ये मेरे हैं वो मेरे नहीं है।
जहाँ प्रतिबंध का बात आएगा मार लगा देगा, वो तो जीव है। प्रति दया
और अपने प्रति निर्दय होना, इस जीव के प्रति दया करना और हमारे प्रति निर्दय हो जाना, क्योंकि इसकी प्रति दया कर वो एक बहुत अच्छी बात है प्रवचन सार में। मनुष्य और तिरियंचों के प्रति दया करना वो दर्शन मोह है, ऐसा लिखा है। तुम चौंकोगे, कहता है मनुज और तिरियंच के प्रति दया के परिणाम वो मोह के भाव, ठीक। दर्शन मोह के परिणाम लिखे हैं वहां, शायद ज्यादा याद हो तो प्रवचन सार के 45 में गाथा है। कर चारित्र मोह के परिणाम नहीं लिए हैं, दर्शन मोह के परिणाम लिए हैं, इसलिए कि वो संयोग के कारण से दुखी है ऐसा मानता है। कोई मनुष्य दुखी है उसके प्रति दया आती है ना, तो उसके प्रति दया क्यों है कि उसके संयोग ऐसे हुए कि वो दुखी हो गया, तो संयोग के कारण से उसको दुखी देखना और दया के परिणाम होना उसमें दर्शन मोह पड़ा, ऐसा लिखा है।
उसके शरीर के प्रति दया थी, उसकी आत्मा के प्रति दया नहीं है।
नहीं, उनकी वर्तमान परिस्थिति में वो दुखी है ना, तो उनको परिस्थिति दिखती है, दुख का कारण में परिस्थिति दिखती है, परिस्थिति के कारण कोई दुखी नहीं है। अज्ञान के कारण दुखी है, इसलिए परिस्थिति ठीक करने के लिए उसको दान देना या उसको अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान का दान देना, क्या करना, क्या दान किसका देना। शास्त्र में भी वो लिखा है कि सबसे बढ़िया से बढ़िया कोई दान होता है तो ज्ञान दान होता है, इससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं है। कि जिस ज्ञान दान से संसार के प्राणी का दुख छूट जाता है वो सर्वथा सुखी हो जाता है।
स्वामी देव और सुभाष भाई के उदाहरण है, उन्होंने कितना आर्थिक संकट में रहते थे पर उन्होंने
पैसा नहीं दिया। ये बहुत समझने लायक प्रसंग बना है। क्या वो वात्सल्य नहीं था उनको है?
कितना वात्सल्य था,
यही बात, सच्चा वात्सल्य था वो। तो आपने लिख गया था ना कि हम हमारे परिवार को राजी रखने में इनके दुश्मन का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कहा था कि नहीं कहा, परिवार को राजी रखने के लिए जो भी करते हैं उसमें उनका लगाव बढ़ता है, उनकी विपरीतता है वो दृढ़ होती है, और उसमें उसको जो नुकसान होता है उसका अनुमोदन हमारा पहुँचता है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ है। कृपाल उद्योग ने सुभाव भाई को उस जमाने में ड्राफ्ट नहीं, हुंडी का सिस्टम था। आपको बहुत तकलीफ है पैसे की और बहुत चिंता में आ गए हो, तो चलो मैं 1,000, 2,000, 5,000 की हुंडी आपको भेज देता हूँ, खाओ पियो मजा करो, हाँ दुखी मत हो। नहीं दिया, कभी 100-200 रुपया का भी हुंडी नहीं भेजा या कैश नहीं दिया। क्यों? बहुत विचक्षण पुरुष थे, बहुत विचक्षण थे। अगर वो देते तो सुभाग भाई की इतनी योग्यता नहीं रहती, और नहीं दिए, नहीं देने, नहीं दे करके ऊपर उठाया, बहुत ऊपर उठाया कि तुम अपने परिवार के प्रति लागणी शून्य, लगाव शून्य हो जाओ, इसलिए ये प्रसंग आया है, कुदरत की प्रसादी आई है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। दूसरा ही है, शुरू शुरू में 200-300 के बीच है, 200 देख लेते हैं, वो पीछे होगा। ऐसे में नायन का तो नहीं लगता है, नीचे है, 223 में नीचे है। नीचे का दो पैराग्राफ है, कहने का आशय यह है कि फिर कठिनाइयां और असाता तो विशेष अनुकूल है, कठिनाई और अशाता तो विशेष अनुकूल है कि जहाँ माया के प्रतिबंध का दर्शन ही नहीं होता। आप तो इस बात को जानते ही है, क्या कहते हैं कि आपको, आपको मैं उपदेश नहीं देता हूँ, आपको मालूम है इस बात का, तथापि कुटुंब आदि के विषय में कठिनाई होनी योग्य नहीं है ऐसा मन में उठता हो, जानने के बावजूद भी फीलिंग है कुटुंब के प्रति वो जोर करती हो, तो उसका कारण यही है कि परमात्मा यूं कहता है कि आप अपने कुटुंब के प्रति निस्नेह होवे। ये कठिनाई है वो परमात्मा ने आपको बोध दे परिणमन करने के लिए भेजी है कि आपको निस्नेह होना है, ऐसा परिणमन कराने के लिए आपको कठिनाई को भेजी है, पर उसके प्रति संभावी होकर के, द्वेष होकर के नहीं, संभावी होकर के प्रतिबंध रहित होवे, कुटुंब का प्रतिबंध छुड़ाने के लिए ये बात है। वह आपका है ऐसा न माने, कुटुंब आपका है ऐसा न माने, और प्रारब्ध युग के कारण ऐसा माना जाता है, देखो भाई हमारे घर में तो पैदा हुए सब लड़के वगैरह, तो उसे दूर करने के लिए, ऐसे भाव को दूर, प्रतिबंध को दूर करने के लिए मैंने यह कठिनाई भेजी है, तो उसमें तो मेरा पारमार्थिक आशय है, तो वो पारमार्थिक आशय खुद जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी मदद, आर्थिक मदद नहीं किया। अधिक क्या कहना, यह ऐसा ही है। परम पुरुष की आज्ञा के निर्वाह के लिए तथा बहुत से जीवों के हित के आजीविका आदि संबंधी आप कुछ लिखते हैं अथवा पूछते हैं, उनमें मौन जैसा वर्ताव होता है, उसमें अन्य कोई हेतु नहीं है जिससे मेरे वैसे मौन के लिए चित्त में विक्षेप और विक्षेपता रखिए गया, और अत्यंत प्रयोजन के बिना अथवा मेरी इच्छा जाने बिना इस विषय में मुझे लिखने या पूछने का न हो तो अच्छा। मुझे इस मुझे मेरे मेरे पास ऐसी बात ही मन मत करना, आपको ये बात ही मेरे पास नहीं करनी। हाँ, सुभाग भाई को लिखा है, मेरी इच्छा जाने बिना या मेरे कहे बिना आपको ये आपकी कठिनाई की बात मुझे करनी नहीं है। आज तो क्या करता है, मुमुक्षु होता है तो कहीं भी जाता है तो रोने लगता है, अरे ऐसी कठिनाई है, ऐसी प्रतिकूलता आ गई है, क्या करें, थोड़ा हम आप हमको मार्गदर्शन दें, रोने का ही काम करते हैं ज्यादा ज्यादा से ज्यादा।
क्योंकि आपको और मुझे ऐसी दशा में रहना विशेष आवश्यक है और उस आजीविकादि के कारण से आपको विशेष भयाकुल होना भी योग्य नहीं है। मुझ पर कृपा करके इतनी बात तो आप चित्त में दृढ़ कर ले तो हो सकती है। बाकी किसी तरह कभी भी भेदभाव की बुद्धि से मौन धारण करना मुझे सूझे ऐसा संभवित नहीं है। आप और हम अलग है ऐसा भेदभाव रख करके तो कभी हमने ऐसा नहीं किया है, ऐसा निश्चय रखिए। इतनी सूचना देनी भी योग्य नहीं है। आपको क्या देना, आप तो सब जानते हैं, इतनी सूचना भी देने योग्य नहीं है। तथापि स्मृति में विशेषता आने के लिए स्मरण कराता हूं मैं, तो आप तो सब जानते ही, ये तो स्मरण कराया है और कुछ नहीं है। योग्यता पर विश्वास कितना है सुभाष भाई की, योग्यता पर कितना विश्वास है आखिर का, इसमें नहीं इसमें। आने का विचार करके तिथि लिखिए गया, जो कुछ पूछना करना हो वह समागम में पूछा जाए तो बहुत से उत्तर दिए जा सकते हैं। अभी पत्र द्वारा अधिक लिखना नहीं हो सकता, डाक का समय हो जाने से यह पत्र पूरा करता हूँ। श्री डूंगर को प्रणाम कहिएगा और हमारे प्रति लौकिक दृष्टि रखकर आने के विचार में कुछ शिथिलता न करें, यही इतनी विनती करिएगा वो डूंगर को लिए कि हमारे प्रति हमारे यहाँ आना है तो कोई लौकिक विचार नहीं करें, क्योंकि वो दोनों बहुत बूढ़े थे और कृपालु देव 28 साल के उम्र के जवान लड़के थे। लौकिक विचार से कोई मत सोचे कि हम वहाँ कैसे जाएं, आना हो तो आ जाइए। आत्मा सबसे अत्यंत प्रत्यक्ष है, ऐसा परम पुरुष द्वारा किया हुआ निश्चय भी हमको अत्यंत प्रत्यक्ष है, यही विनंती है। आज्ञाकारी रायचंद के प्रणाम विदित हो, ठीक है। आज्ञाकारी, हम आपके आज्ञाकारी है, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आपको आज्ञाकारी रहना है। टाइम